अंगूठी की धड़कन अचानक रुक गई, धक, और फिर कुछ नहीं। एक पल पहले जो हल्की लय उसकी नाड़ी से मिल रही थी वो मानो किसी ने एक झटके में काट दी हो, गर्माहट गायब हो गई और उसकी जगह वही पुरानी मृत ठंड लौट आए। इतनी ठंडी की उंगली के आसपास की त्वचा सुन्न सी महसूस होने लगी। रुद्र कुछ सेकंड तक स्थिर खड़ा रहा, उसकी नजर अंगूठी पर थी लेकिन इस बार उसमें जिज्ञासा कम सतर्कता ज्यादा थी। तो तुम सिर्फ संकेत देती हो, उसने मन ही मन सोचा। जब चाहो जागती हो, जब चाहो सो जाती हो। उसने शादी का निमंत्रण धीरे से टेबल पर वापस रख दिया। कागज अब भी बर्फ जैसा ठंडा था लेकिन उस पर लिखे शब्द स्थिर थे जैसे उन्होंने अपना संदेश दे दिया हो। कमरे में फिर सन्नाटा उतर आया, भारी लेकिन अब उसे ये बोझिल नहीं लग रहा था, बल्कि अजीब तरह से परिचित। रात भर की लड़ाई, सुबह की खोज, चौकीदार की बातें और यह निमंत्रण, उसका दिमाग लगातार काम कर रहा था, बहुत ज्यादा। उसे एहसास हुआ अगर वह अभी नहीं रुका तो शरीर खुद उसे रोक देगा। रुद्र धीरे धीरे बेड की ओर बढ़ा और बिना कपड़े बदले ही उस पर गिरसा पड़ा। गद्दा पीठ से लगा और तभी उसे महसूस हुआ कि वह वास्तव में कितना थक चुका है। मांसपेशियों में जमा तनाव धीरे धीरे ढीला पड़ने लगा। उसने एक लंबी सांस ली, आंखें बंद की और पहली बार भीतर का शिकारी कुछ देर के लिए चुप हो गया। नींद आई, अचानक, गहरी, बिना सपनों की, जैसे चेतना ने खुद को अस्थायी रूप से दुनिया से अलग कर लिया हो। जब उसकी आंख खुली कमरे में रोशनी का रंग बदल चुका था। सुबह की सुनहरी चमक अब सफेद दोपहर में बदल गई थी। घड़ी 2:17। रुद्र कुछ सेकंड तक छत को देखता रहा, दिमाग अभी भी नींद की धुन से बाहर आ रहा था। फिर उसके पेट ने जोर से आवाज की, भूख तेज कच्ची। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसने पिछली रात के बाद कुछ खाया ही नहीं था। वह धीरे से उठकर बैठ गया, शरीर अब पहले से हल्का लग रहा था। पूरी तरह ठीक नहीं लेकिन टूटता हुआ भी नहीं, रिकवरी तेज हो रही है, उसने नोट किया। शायद प्राण ऊर्जा सिर्फ लड़ने के लिए नहीं भरने के लिए भी थी। वह उठा, चेहरे पर पानी मारा और बिना ज्यादा सोचे बाहर निकल गया। इस समय उसे सिर्फ एक चीज चाहिए थी, खाना, गरम, तुरंत। सोसाइटी के बाहर सड़क दोपहर की लय में धड़क रही थी। ऑटो के हॉर्न, दूर से आती सब्जी वाले की आवाज, किसी दुकान पर बजता पुराना फिल्मी गाना। जीवन यहां बिल्कुल सामान्य था, इतना सामान्य कि रात की घटनाएं किसी और दुनिया की लगती। रुद्र सड़क पार करके एक छोटे लेकिन साफ रेस्टोरेंट में जा बैठा। स्टील की टेबल, नीले प्लास्टिक की कुर्सियां, दीवार पर फीका पड़ा मेन्यू। उसने ज्यादा सोचा नहीं, एक थाली और पानी, उसने वेटर से कहा। खाना आया, चावल से उठती भाप, दाल की खुशबू, गरम रोटियां। पहला निवाला मुंह में जाते ही उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर सचमुच इस ऊर्जा का इंतजार कर रहा था, जैसे हर कोशिका राहत की सांस ले रही हो। कुछ मिनट तक वो सिर्फ खाता रहा बिना सोचे बिना देखे। तभी रेस्टोरेंट के बाहर एक काली SUV आकर रुकी। गाड़ी की आवाज बहुत तेज नहीं थी, फिर भी किसी कारण से रुद्र का ध्यान तुरंत उधर चला गया। यह आदत थी शिकारी की, उसने अनायास ही सिर थोड़ा उठाकर कांच के पार देखा। SUV नहीं थी, काली, चमकदार, शीशे पूरी तरह टिंटेड, इंजन बंद हुआ लेकिन दरवाजा तुरंत नहीं खुला। 3 सेकंड, 4, 5। रुद्र के भीतर एक हल्की खिंचाव सी पैदा हुई, कोई कारण नहीं था। फिर भी उसकी इंद्रियां सतर्क हो गईं, अंगूठी अब भी ठंडी थी। अचानक पीछे का दरवाजा खुला, सबसे पहले एक चमकदार काला जूता बाहर आया, फिर दूसरा, एक लंबा आदमी उतरा, लगभग 6 फुट से ज्यादा, चौड़े कंधे, बिल्कुल सीधी मुद्रा। उसने काला सूट पहन रखा था जबकि मौसम इतना ठंडा भी नहीं था। उसकी हर हरकत में अजीब तरह की सटीकता थी, जैसे वह चल नहीं रहा, मापा हुआ कदम रख रहा हो। ड्राइवर सीट से दूसरा आदमी उतरा, उसने आसपास एक नजर डाली, सिर्फ देखना नहीं जांचना। रुद्र का हाथ थाली के ऊपर ही रुक गया, दिल की धड़कन सामान्य थी पर चेतना तेज। ये लोग यहां खाने नहीं आए, उसके भीतर एक साफ विचार उभरा। तभी SUV के दूसरे दरवाजे से कोई और उतरा, इस बार धीमे, बहुत धीमे, सफेद सैंडल जमीन को छुए, फिर हल्के क्रीम रंग का कपड़ा और आखिर में एक लड़की, उम्र शायद 23-24, चेहरा शांत, बहुत ज्यादा शांत, इतना कि पहली नजर में सुंदरता दिखे और दूसरी नजर में कुछ असामान्य। उसकी आंखें रेस्टोरेंट की तरफ उठी और ठीक उसी क्षण रुद्र की उंगली में पहनी अंगूठी एक पल को बर्फ से भी ज्यादा ठंडी हो गई, जैसे किसी ने उसकी नसों में सर्द हवा भर दी हो। लड़की की नजर सीधे उस पर आकर ठहर गई। भीड़ थी, कई लोग थे, फिर भी सीधे उसी पर। 2 सेकंड, 3। रुद्र ने नजर नहीं हटाई और तभी उसने महसूस किया उस लड़की की आंखों में एक बेहद हल्की पहचान चमकी, जैसे वह उसे पहली बार नहीं देख रही। लड़की के होंठ बहुत हल्के हिले, इतना हल्का कि शब्द पढ़े नहीं जा सकते थे, लेकिन रुद्र को अचानक लगा जैसे किसी ने बहुत दूर से उसका नाम पुकारा हो। हवा एक पल को भारी हो गई। फिर लड़की मुड़ी और रेस्टोरेंट की ओर बढ़ने लगी। रुद्र के होंठों पर धीरे धीरे वही पुरानी शिकारी मुस्कान लौट आई। तो खेल बाहर भी फैल रहा है। उसने पानी का गिलास उठाया, एक घूंट लिया, नजर दरवाजे पर टिकाए रखी और मन ही मन सोचा, तुम कौन हो, शिकार या शिकारी? अंदर को रेस्टोरेंट का कांच का दरवाजा हल्के से खुला, एक धीमी सी घंटी बजी, टन लड़की अंदर आई। उसके साथ वही दो आदमी भी थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि जैसे ही वो भीतर कदम रखती, पूरे माहौल की लय एक पल को बदल गई। बातें चल रही थी पर धीमी लगने लगी, चम्मचों की आवाज आ रही थी पर दूर से, जैसे किसी ने अदृश्य परत डाल दी हो। रुद्र ने यह बदलाव तुरंत महसूस किया, उसकी उंगलियां गिलास पर टिकी थीं, लेकिन ध्यान पूरी तरह उस लड़की पर था। वो सीधे नहीं चल रही थी, उसके कदम शांत थे, नियंत्रित, हर कदम में एक अजीब स्थिरता थी, डर की नहीं बल्कि। उसने कमरे पर एक नजर डाली, एक बार, बस एक बार, और फिर उसकी नजर वापस रुद्र पर आकर टिक गई। इस बार कोई संदेह नहीं था, वो उसे ही देख रही थी। वेटर तुरंत आगे आया, मैम इधर, उसने सिर हिलाया लेकिन बैठी नहीं, कुछ सेकंड तक खड़ी रही जैसे किसी चीज की पुष्टि कर रही हो। फिर वह मुड़ी और सीधे रुद्र की टेबल की तरफ चल पड़ी। रुद्र की धड़कन अब भी स्थिर थी पर भीतर का शिकारी पूरी तरह जाग चुका था। खतरा अभी स्पष्ट नहीं, असामान्य निश्चित रूप से। वह उसकी टेबल के सामने आकर रुक गई, ये सीट खाली है, उसकी आवाज नम थी लेकिन उसमें गर्माहट नहीं थी, जैसे ठंडा पानी साफ पर स्पर्श में सिहरन छोड़ दे। रुद्र ने थाली से नजर उठाई, एक सेकंड तक उसे देखा, फिर कुर्सी की ओर इशारा किया। हाँ, लड़की बैठ गई। दोनों आदमी दूर वाली टेबल पर जा बैठे, लेकिन उनकी नजरें इधर से हट नहीं रही थीं। रुद्र ने यह नोट किया, गार्ड या कुछ और, कुछ पल चुप्पी रही। वेटर आया, मैम ब्लैक कॉफी, सिर्फ इतना। वह फिर रुद्र की ओर मुड़ी, आप यहाँ नए हैं? ये सवाल नहीं था, एक कथन था। रुद्र हल्का सा मुस्कुराया, इतना साफ दिख रहा है, जो लोग यहाँ पुराने हैं, उसने कहा, उनकी आंखों में जिज्ञासा नहीं होती। रुद्र के भीतर एक हल्की चमक उभरी, ये साधारण बातचीत नहीं थी। और मेरी आंखों में क्या है, उसने पूछा। लड़की ने बिना झिझक जवाब दिया,
आप देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं और डर नहीं रहे।
अंगूठी फिर हल्की ठंडी हुई, इस बार रुद्र ने उसे छिपाने की कोशिश भी नहीं की। उसने सीधा पूछा, क्या मुझे डरना चाहिए? लड़की कुछ सेकंड उसे देखती रही,
फिर बहुत हल्का मुस्कुराई, पहली बार। और उसी पल रुद्र के मन में एक झटका सा लगा। उस मुस्कान में खुशी नहीं थी, वह पहचान थी, जैसे दो खिलाड़ी पहली बार एक ही बोर्ड पर आमने सामने बैठे हों। डर, उसने धीरे से कहा, हमेशा सही चीज से होना चाहिए।
कॉफी आ गई, भाप ऊपर उठी, लेकिन रुद्र का ध्यान उस पर नहीं था। हम पहले मिले हैं, उसने अचानक पूछा। लड़की की उंगलियां कप के किनारे पर टिक गईं,
एक पल को रुकी, फिर उसने कप उठाया, घूंट लिया और बोली,
नहीं, रुक कर जोड़ा, कम से कम इस तरह नहीं। उस जवाब ने हवा को और भारी कर दिया। रुद्र पीछे टिक गया, अब वह खुलकर उसे देख रहा था। उसकी त्वचा अस्वाभाविक रूप से फीकी नहीं थी, फिर भी उसमें धूप का कोई निशान नहीं।
आंखें गहरी थीं, बहुत गहरी, जैसे उनकी तह में कोई और परछाई रहती हो। तभी अंगूठी अचानक सख्त हो गई, इतनी कि उंगली में हल्का दर्द उठा। रुद्र की नजर झटके से नीचे गई और उसी क्षण लड़की ने फुसफुसा कर कहा,
वह अंगूठी। रुद्र का सिर उठा, क्या? कुछ सेकंड तक वह चुप रही, फिर बोली, उसे संभाल कर रखिए, हर चीज उपहार नहीं होती। अब रुद्र पूरी तरह सतर्क था, आप कहना क्या चाहती हैं?
लड़की झुकी, बहुत हल्का, इतना कि उसकी आवाज सिर्फ रुद्र तक पहुंचे।
काली पहाड़ी जाग रही है, रुद्र के भीतर जैसे किसी ने तार छेड़ दिया। दिल एक पल को भारी धड़का, लेकिन चेहरे पर कुछ नहीं आया। और आपको ये कैसे पता? लड़की सीधी हुई, कप टेबल पर रखा,
टक, क्योंकि, उसने कहा, ये हम लोगों का काम है।
रुककर उसकी आंखों में देखा, और कुछ लोग खुद चले आते हैं। चुप्पी, रेस्टोरेंट की आवाजें वापस सुनाई देने लगीं।
पर उनकी टेबल के आसपास अब भी एक अदृश्य घेरा सा था।
रुद्र ने धीरे से पूछा, मैं किस तरह का हूं? लड़की ने बिना सोचे जवाब दिया, अभी तय नहीं। फिर पहली बार उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया,
ईरा, रुद्र की नजर उसके हाथ पर गई, एक सेकंड, दो,
फिर उसने हाथ मिला लिया, स्पर्श, बर्फ, उसकी त्वचा अस्वाभाविक रूप से ठंडी थी। उसी पल अंगूठी में एक तेज सिहरन दौड़ी, ईरा की पलके हल्की फड़की,
जैसे उसने भी कुछ महसूस किया हो। दोनों ने तुरंत हाथ छोड़ दिया।
अब संदेह नहीं था, वह अलग थी। ईरा उठ खड़ी हुई, सलाह दूंगी, उसने कहा, आज रात खिड़कियां बंद रखिएगा
या कहीं और रहने चले जाए। रुद्र हल्का सा हंसा, और अगर आवाज आए तो?
ईरा की आंखें स्थिर हो गईं, तो जवाब मत दीजिएगा। वो मुड़ी, दो कदम चली, फिर बिना पीछे देखे बोली, हर पुकार इंसानों के लिए नहीं होती।
वह अपने लोगों के साथ टेबल पर कुछ देर तक बैठी रही। हल्की बातचीत, धीमी हंसी और कॉफी की गर्म भाप के बीच जैसे समय ठहर सा गया था। कप खाली होते ही उसने एक गहरी सांस ली, मानो आने वाले सफर के लिए खुद को तैयार कर रही हो। बाहर खड़ी एसयूवी का इंजन फिर से गरजा और अगले ही पल वह सड़क पर दौड़ पड़ी।
रुद्र रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा उसे जाते हुए देख रहा था।
गाड़ी मुड़ी और ट्रैफिक में खो गई। कुछ सेकंड तक वह वहीं खड़ा रहा,
फिर अंगूठी में एक बेहद हल्की गर्माहट लौटी, बहुत सूक्ष्म, जैसे कोई सोई हुई चीज करवट ले रही हो। रुद्र के होठों पर धीमी मुस्कान उभरी। अब ये साफ था, खेल सिर्फ आत्माओं तक सीमित नहीं, खिलाड़ी बढ़ रहे थे। उसने आसमान की ओर देखा, दोपहर का सूरज तेज था, फिर भी उसे यकीन था आज की रात शांत नहीं होने वाली। अंडरस्कोर एसयूवी भीड़ में गायब हो चुकी थी, लेकिन रुद्र भी वहीं खड़ा था। उसकी नजर सड़क पर नहीं, भीतर कहीं अटकी हुई थी। ईरा नाम साधारण था, वो नहीं। उसने धीरे से अपनी उंगली को छुआ। अंगूठी अब हल्की गुनगुनी थी, ये गर्माहट अलग थी, चेतावनी जैसी नहीं बल्कि प्रतिक्रिया जैसी, जैसे वो ईरा की उपस्थिति को पहचान गई हो। तो तुमने भी उसे महसूस किया, रुद्र ने मन ही मन कहा। वो वापस अपनी टेबल पर आया, बिल चुकाया और बाहर निकल गया। दोपहर ढलने लगी थी, धूप अब थोड़ी नम हो चुकी थी, लेकिन हवा में एक अजीब भारीपन था, जैसे मौसम बदलने वाला हो। चलते चलते अचानक उसे एहसास हुआ वह थका नहीं था। कल रात के बाद पहली बार उसके भीतर ऊर्जा स्थिर लग रही थी, भूख शांत, दिमाग साफ और इंद्रियां पहले से ज्यादा तेज। सड़क पार करते समय बिना देखे ही उसे पीछे से आती बाइक का अंदाजा हो गया। वह आधा कदम पीछे हट गया और बाइक उसके सामने से तेज निकल गई। रुद्र रुका, हल्का सा मुस्कुराया, फियर रेजिस्टेंस, उसने सोचा, या कुछ और। दूसरे सोसाइटी का गेट सामने था, दूर से ही उसने देखा वही बुजुर्ग चौकीदार कुर्सी पर बैठा था, लेकिन इस बार वह चाय नहीं पी रहा था, बस खाली नजरों से सड़क को देख रहा था। रुद्र पास पहुंचा, काका, बुजुर्ग जैसे झटके से वर्तमान में लौटा। अरे बेटा, बाहर गए थे? हाँ, रुद्र कुछ पल रुका, फिर सहज स्वर में पूछा, यहाँ काली एसयूवी अक्सर आती है क्या? बुजुर्ग की भौं हल्की सिकुड़ी। काली, नई, टिंटेड शीशे। कुछ सेकंड की चुप्पी, फिर उसने धीरे से कहा, अगर वही है जो मैं सोच रहा हूँ तो बेटा उनसे दूरी ही रखना। रुद्र की दिलचस्पी बढ़ी, क्यों? बुजुर्ग थोड़ा झुका, आवाज और धीमी, वो लड़की कभी कभी आती है, रहती यहां नहीं फिर भी आती है, और जब भी आती है ना, उसने गेट के अंदर झांक कर देखा, उस रात कुत्ते भौंकते नहीं। हवा एक पल को स्थिर हो गई। रुद्र ने तुरंत नोट किया, जानवर अक्सर वो देख लेते हैं जो इंसान नहीं देख पाते। नाम पता है उसका? उसने पूछा। बुजुर्ग ने सिर हिलाया। लोग उसे अलग अलग नाम से बुलाते हैं, कोई कहता है रिसर्चर है, कोई कहता है किसी ट्रस्ट से जुड़ी है। रुक कर बोला, पर एक बात सब कहते हैं। क्या? बुजुर्ग की आंखें थोड़ी धंस गईं। उसकी आंखों में उम्र नहीं है। रुद्र के भीतर एक हल्की ठंड उतरी। उम्र नहीं, उसे अचानक याद आया, ईरा की नजर, स्थिर, बहुत पुरानी। काका, उसने पूछा, आपने कभी उससे बात की? बुजुर्ग तुरंत बोला, नहीं। इतनी तेजी से कि जवाब लगभग फिसल गया, फिर उसने धीमे जोड़ा, कुछ लोगों से जितना कम बोलो उतना अच्छा। रुद्र ने हल्का सिर हिलाया और अंदर बढ़ गया, लेकिन उसके कदम अनायासी धीमे पड़ गए और दिशा बदलते हुए फिर से अपने घर की ओर लौटने लगे। दिमाग काम कर रहा था, ईरा काली पहाड़ी के बारे में जानती है। अंगूठी ने उसे महसूस किया, जानवर शांत हो जाते हैं, या तो वह शिकारी है या उससे भी ऊपर। लिफ्ट के शीशे में अपनी परछाई देखते हुए अचानक उसे कुछ अजीब लगा। एक पल के लिए उसे लगा जैसे उसकी परछाई आधा सेकंड देर से हिली। वो तुरंत स्थिर हो गया, परछाई भी, उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन नोट कर लिया। दरवाजा खुला, कॉरिडोर शांत था, असामान्य रूप से शांत। पहले यहां दोपहर में अक्सर कहीं न कहीं टीवी की आवाज, बच्चों की हंसी, बर्तनों की खनक सुनाई देती है, आज कुछ नहीं। उसके फ्लैट के पास पहुंचते ही अंगूठी फिर ठंडी होने लगी, धीरे धीरे, जैसे तापमान गिर रहा हो। रुद्र रुक गया, दरवाजा सामने था बंद, सब सामान्य, फिर भी उसकी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए। उसने जेब से चाबी निकाली, ताले में डाली, घुमाई, टक, दरवाजा खुला। कमरा वैसा ही था जैसा वह छोड़कर गया था। सोफा, टेबल, पर्दा, और टेबल पर वह लाल शादी का निमंत्रण, लेकिन इस बार वह टेबल पर नहीं था, फर्श पर पड़ा था, ठीक दरवाजे के सामने, जैसे किसी ने जानबूझकर वहां रखा हो। रुद्र धीरे धीरे झुका, कागज उठाया। इस बार ठंड पहले से ज्यादा थी और स्याही फिर बदल चुकी थी। अंडरस्कोर, उसने पढ़ा, बारात एक साल बाद आएगी। रुद्र की सांस इस बार अचानक नहीं रुकी, बल्कि धीरे धीरे भीतर गई और उतनी ही धीमी बाहर निकली। एक साल, उसकी नजर खुद ब खुद भीतर कहीं गणना करने लगी। 412 दिन, उसके होठों पर एक बेहद हल्की मुस्कान उभरी। तो समय तय है, उसी क्षण अंगूठी की गर्माहट बुझने लगी, जैसे किसी ने जलती धातु पर ठंडा पानी डाल दिया हो। कुछ सेकंड पहले जो चेतावनी उसमें धड़क रही थी वो पूरी तरह शांत हो गई। अब वो बिल्कुल साधारण लग रही थी, न कोई धड़कन, न ताप, न कंपन, बस एक काली अंगूठी। लेकिन जब रुद्र ने आदतन उसे घुमाने की कोशिश की, वह हिली तक नहीं। उसने थोड़ा जोर लगाया, त्वचा खींची, हल्का दर्द उठा, अंगूठी वहीं जमी रही, जैसे वो उंगली पर पहनी नहीं गई हो, बल्कि उंगली उसी में ढल गई हो। रुद्र ने हाथ छोड़ दिया। ठीक है, उसने धीमे से कहा, मत निकलो। उसकी आंखों में डर नहीं था। अब ये संबंध उसे अजीब नहीं लगता था, बल्कि उपयोगी। अगर यह अंगूठी चेतावनी दे सकती है तो ये सिर्फ बंधन नहीं, एक उपकरण भी है। वो मुड़ा और कमरे के अंदर चला आया, दरवाजा बंद किया। कॉरिडोर फिर शांत हो गया। टेबल तक पहुंचकर उसने लाल निमंत्रण को दोबारा देखा। शब्द स्थिर थे, अब उनमें कोई बदलाव नहीं, जैसे संदेश दिया जा चुका हो। अब अगली चाल उसकी थी। रुद्र कुर्सी पर बैठा, पीठ टिकाए और धीमे स्वर में कहा, सिस्टम, स्टेटस। हवा में हल्का कंपन उठा, नीली रोशनी फिर उभरी। होस्ट, अनुराग, एज 20, रिमेनिंग लाइफ स्पैन 412 डेज, एबिलिटी प्राणा अब्सॉर्प्शन लेवल 1, कॉम्बैट आर्ट काल भैरव ब्लेड 6.4/10, पैसिव स्किल फियर रेजिस्टेंस माइनर हिडन क्वेस्ट सील द ब्लैक हिल गेट, वार्निंग अपडेटेड इवेंट क्लास मैनिफेस्टेशन डिटेक्टेड,
टाइम एंकर 1 ईयर। रुद्र की नजर टाइम एंकर पर टिक गई।
तो यह कोई साधारण आत्मिक घटना नहीं, यह एक निर्धारित आपदा थी, फिक्स, अपरिहार्य, आने वाली। उसने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली, फिर बहुत शांत स्वर में बोला, मतलब मेरे पास तैयारी के लिए समय है। और उसी क्षण उसके भीतर एक विचार स्पष्ट होकर उभरा, हथियार, गंडासा, कल रात के लिए ठीक था, लेकिन अब अगर इवेंट क्लास खतरा आने वाला है तो उसे ऐसा अस्त्र चाहिए जो सिर्फ शरीर नहीं अस्तित्व को काट सके। उसकी उंगलियां कुर्सी पर थाप देने लगी, टक टक टक, विकल्प क्या है। उसका दिमाग तुरंत विश्लेषण मोड में चला गया।